الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين ولعنة دائمة على أعدائه وأعدائهم أجمعين أما بعد سب سے پہلے تمام مومنین و تمام عزیزان کو آج کے دن کی مناسبت سے کہ 13 رجب عید میلاد امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اس پر مسرت موقع کی مناسبت سے آپ سب دوستان کی خدمت میں ہدیے تبلیغ و تہنیت عرض ہے۔ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کے شخصیت اور ان کی ذاتی زندگی کی سیرت سے ہم نے جس پہلو کا انتخاب کیا وہ سیاست کا نہج و بلاغہ کے تناظر میں جائزہ ہے۔ گزشتہ 3 دروس میں ہم جن نکات کو بنیادی نکات کو پڑھ چکے ہیں اور یہی 3 بنیادی نکات ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ ان 3 نکات میں ہم نے یہ بات ملاحظہ کی، پہلا نقطہ یہ تھا کہ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکومت کی اصلاً ضرورت نہیں ہے، یعنی ذاتی میلان اور ذاتی شخصیت کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ نہ راغب ہیں حکومت میں اور نہ اقتدار کو چاہتے ہیں، وہ ایک وظیفہ اسے سمجھتے ہیں۔ حکومت ایک وظیفہ ہے، ایک مسئولیت ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ لہذا ہم نے پہلے درس میں یہ بات ملاحظہ کی کہ ان کی نظر میں دنیا کی یہ حکومتیں اور دنیا کی بادشاہت اور دنیا کا اقتدار یہ بکری کی چھینک سے بھی بدتر ہے، یا کیڑا جو ایک پتا کھاتا ہے اور کھاتے ہوئے جو ذرات نیچے گراتا ہے ان ذرات سے بھی یہ حکومت بدتر ہے، یا ایک ایسا جوتا کہ جس کو اس قدر گانٹھا گیا ہو اور اس قدر اس کے اوپر پیوند لگائے گئے ہوں کہ اب اس میں پیوند لگانے کی بھی جگہ موجود نہیں ہے، تو اس جوتے کی کیا قیمت ہوگی؟ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر میں حکومت اس سے بھی کم قیمت اور کم مایا چیز ہے، بے مایا چیز ہے، جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ نگاہ پیدا ہونا ایک سخت مشکل کام ہے کہ دنیا کے اعتبار سے ایک منصب انسان کو ملے اور اس منصب کو وہ دنیا کے اعتبار سے حقیر سمجھے اور وظیفہ اور مسئولیت کے اعتبار سے ایک ذمہ داری سمجھے، یہ الہی شخصیت میں ہی نگاہ پیدا ہو سکتی ہے۔ وإلا ایک عام طور پہ عام افراد اگر ایک چھوٹی سی انجمن کے بھی صدر بن جائیں اور 4 بندوں کی کوئی ٹیم ہو اور اس ٹیم میں اسے ہیڈ بنا دیا جائے تو وہ ایک اپنے اندر خود عجیب سا احساس سرداری یا احساس عزت کرتا ہے، احساس حاکمیت کرنے لگ جاتا ہے۔ لہذا یہ نگاہ پیدا کرنا خود ایک عظیم الہی انسان ہی سے یہ ممکن ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اس اقتدار اور اس وسیلے کی کوئی قیمت نہ ہو اور وظیفہ اور ذمہ داری کے اعتبار سے اور اس باب سے اس کی قیمت ہو۔ یہ پہلا نقطہ تھا جو ہم نے درس میں ملاحظہ کیا۔ دوسرا ہم نے درس میں یہ نقطہ ملاحظہ کیا کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر میں اگر حکومت سے کچھ مقصود ہے تو وہ مظلوم کا ظالم سے حق لینا ہے۔ لہذا ان کی نظر میں حکمران کیا ہیں، یعنی حکومت کا تصور کیا ہے امام علی علیہ السلام کی نگاہ میں، تو ہم نے یہ ملاحظہ کیا، کیونکہ یہ والا ٹاپک انشاءاللہ آگے زیادہ کھلے گا۔ یہ جو دوسرا نقطہ ہے اس میں ہم نے صرف ان کلمات سے استفادہ کیا کہ امام فرماتے ہیں کہ لوگوں میں ایک حاکم ہونا چاہیے، یعنی حاکم کا نہ ہونا سب سے بدترین صورت ہے جس سے انسانی زندگی ختم ہو کے روئے زمین پر رہ جائے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو لا دین انسان، ملحد اور سیکولر انسان بھی اس کا اعتراف کرتا ہے کہ اگر ایک جگہ پر کسی قسم کی حکومت اور حاکم نہیں ہے ادھر زندگی ممکن نہیں ہے۔ اب یہ حاکم یا بر، نیک، پاکیزہ، عادل ہوگا یا فاجر ہوگا، بہرحال حاکم ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک نقطۂ نظر ہے امیر المومنین علیہ السلام کو جو نہج البلاغہ سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ حاکم کا ہونا وہ ضروری ہے، اور حاکم کون سا ہونا چاہیے؟ یقیناً عادل، پاکیزہ، پرہیزگار، امانت دار، ये हाकिम होना चाहिए, इसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन दूसरे हमने दर्स में सिर्फ इस पहलू को मुलाहिज़ा किया कि हुकूमत और हाकिम हतमन होना चाहिए, ये इमाम अलैहिस्सलाम की निगाह उनकी सीरत में झलकती है। मसलन एक जगह एक वक्त आता है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम से उनका हक़ खिलाफत व हुकूमत व हाकमियत ले लिया जाता है, सल्ब कर लिया जाता है। आया जब इमाम अली अलैहिस्सलाम का हक़ सल्ब किया जाए तो वो ऐसे हालात पैदा करेंगे कि कोई हाकिम ना उधर हो, ये काम नहीं करेंगे। ये वो वजह है कि जब इमाम अली अलैहिस्सलाम से उनका हक़ खिलाफत व इमामत माशरे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद सल्ब कर लिया, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने ऐसा इकदाम नहीं किया कि उस माशरे में कोई हाकिम ना रहे। वहाँ पे उन्होंने ये वाली हिकमत इख्तियार की कि अगर उनके हाथ में वक्ती तौर पे अभी खिलाफत और इमामत की जमाम नहीं आ रही तो फिर उसको उन्होंने उनके ऊपर छोड़ दिया जिनके हाथ में जा रही है। और जो हस्बे इस्तताअत उम्मत इस्लामिया व वहदत इस्लामी और माशरे की इस्लाह के लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम कर सकते थे वो किया, जिसे बाज़ लोग इस इनवान से कभी ताबीर करते हैं कि खलीफे दुवुम को मशवरे दिए, कभी इस इनवान से ताबीर करते हैं कि अदालतों में जाके उन्होंने कजावत के सही फ़ैसले किए और बड़ी बड़ी ख़ताओं से, ख़तरनाक तरीन ख़ताएँ कि जिससे आसमान पानी बरसाना तर्क कर देता है और ज़मीन उगाना ख़त्म कर देती है, उन ख़ताओं से उन्होंने माशरे को बचाया। ये किसी एक शख्स की मदद के लिए नहीं किया इमाम अली अलैहिस्सलाम ने, बल्कि अपने हक़ ज़िम्मेदारी खिलाफत व हाकमियत जो अल्लाह ताला की तरफ से उनके सुपुर्द हुई है, हसब इस्तताअत उन्होंने माशरे की इसलाह की। लिहाजा ये नुक्ता हमें तफसीली तौर पे इमाम की ज़िंदगी में नज़र आता है, लेकिन हमने मुख्तसर तौर पे एक उसूल की हद तक पढ़ा। पहला तो हमने उसूल ये पढ़ा कि दुनिया के एतबार से हुकूमत का कोई उनका रुझान नहीं है, कोई कीमत नहीं है। दूसरा हमने सियासत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में ये उसूल पढ़ा, हाकिम हतमन होना चाहिए, ऐसा इकदाम ना करें कि एक माशरे में कोई भी हुकूमत और हाकिम ना हो। ये हमने दूसरा इनवान पढ़ा। तीसरा इनवान हमने ये मुलाहिज़ा किया कि इमाम अली अलैहिस्सलाम जिस नौयत की हुकूमत चाहते हैं और जिस नौयत का हुक्मरान चाहते हैं वो आदिल हो, वो पाकीज़ा हो, जो अल्लाह की तरफ माशरों को लेके जाए। अगरचे ये वाला मौजू भी आगे जाके ही खुलेगा, लेकिन ये हम सियासत के बुनियादी उसूल पढ़ रहे हैं और चंद नुसूस हमने पढ़ी। आज हम इस बहस को कदर मुनज़्ज़म करते हैं और देखते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का क्या उसूल और ज़ाबिता था हुकूमत के एतबार से, कैसी हुकूमत चाहते थे, क्योंकि ये तो हमें पता लग गया दुनिया के लिए हुकूमत नहीं चाहते। दूसरा नुक्ता हमें ये मालूम हो गया हतमन हाकिम उनकी निगाह में हतमी तौर पर हाकिम होना चाहिए। तीसरा हमने देखा कि इलाही हुकूमत वो चाहते हैं, अगर चीज़ की तफसील आगे मज़ीद आएगी। आज हम ये देखते हैं कि वो हुकूमत को अगर उनके हाथ में हुकूमत आए तो हुकूमत कैसे बरपा करेंगे, यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत उसूल और कवानीन के ऊपर मुश्तमिल है। इस जगह पे आप ये बात कह सकते हैं कि जब इख्तदार किसी शख्स के पास आता है तो उसके अंदर जो अहदाफ उस इख्तदार और हुकूमत और हाकमियत से पेश नज़र होते हैं वो उसके सामने आना शुरू हो जाते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास अगर इख्तदार आ जाए और उनके पास हुकूमत का ये एक कुदरतमंद वसीला आ जाए तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम किस तरह से माशरे के अंदर सियासत को बरपा करेंगे। इस मकाम पे मुख्तसर तौर पे पहले हम ये जान लें सियासत कहते किसे हैं। सियासत के लुग़वी मायने, क्योंकि सियासत का कलिमा रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम में वाज़ तौर पे इस्तेमाल हुआ है, सासतुल इबाद जहाँ ज़ियात जाम कबीरा में वाज़ तौर पे कहा गया है कि बंदों की सियासत करने वाले, सियासत यानी मैनेज करना, सियासत यानी तदबीर करना, सियासत यानी एक माशरे को फ़ैसले करते हुए और मंसूबे के तहत चलाना, तभी चलाया जा सकता है ये हुक्म सादिर करें, और हुक्म जो है वो किस तरह काबिल अमल करार पाए मुख्तलिफ़ शोबों के ज़रिए से, इन शोबों को बराह रास्त जो हैंडल कर रहा है, इन शोबों को बराह रास्त जो तदबीर कर रहा है, चला रहा है, इदारा कर रहा है, उसे कहते हैं साइस, یا حاکم، سیاستدار، سیاست کرنے والا. لفظ سیاست عربی لفظ ہے جو اردو میں آیا ہے، یہ اردو کا لفظ نہیں ہے. ساسا یسوسو سے، یعنی فعلا یفعلو سے ہے، ساسا یسوس سیاستن. سیاست کلمہ یہ عربی کا لفظ ہے جس سے اس میں فاعل آتا ہے سائس. سیاست کرنے والے کو کہتے ہیں سائس، جس میں مدد کرنے والے کو کہتے ہیں ناصر. نصرہ، اس نے مدد کی، ناصر مدد کرنے والا، ساسا اس نے سیاست کی، سائس یعنی سیاست کرنے والا. یہ کلمہ میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم جو امام علیہ السلام کے کلمات سے پڑھیں گے وہ اس جگہ پر امام کے کلمے میں یہ لفظ، کلام میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. بس لفظ سیاست، ابھی ہم لفظ سیاست سنتے ہیں، ممکن ہے ہمارے ذہن میں آئے کہ اقتدار حاصل کر کے اپنی تجوریاں بھرنا، اپنے مفادات حاصل کرنا، زمینیں خریدنا، عیاشی کرنا، شہوات کو پورا کرنا، ممکن ہے کہ ذہن میں سیاست کا یہ معنی آئے. لیکن سیاست کا اگر لغتاً معنی دیکھیں، کیا فوراً ذہن میں آنا چاہیے؟ لفظ سیاست یا پولیٹکس، اس کا معنی یہ ہے ایک جگہ کو مینیج کرنا، ایک جگہ کو ادارہ کرنا، ایک جگہ کی مدیریت کرنا، یعنی پورے معاشرے کو چلانا. مثلا ابھی پاکستان میں کوئی حاکم آ جائے اور وہ سیاست کرے، وہ کیا کرے گا؟ جیسے وزیر اعظم صاحب ہیں ابھی ہمارے، انہوں نے سیاست کرنی ہے، وہ کیا سیاست کریں گے؟ وہ وہاں پہ آتے ساتھ جب آ کے حاکم بنیں گے تو جو بڑے بڑے ادارے ہیں جن کے ذریعے سے ملک چلتا ہے، جیسے عدلیہ ہے، جس طرح سے پارلیمنٹ ہے جو قانون بناتی ہے، یا اس طرح سے مجریہ کے ادارے ہیں جو اجرا کرتے ہیں، جیسے ایجوکیشن ہے، ڈیفنس سسٹم ہے ہمارا، ان سب اداروں کے اوپر وہ اپنا قبضہ کریں گے اور ان کے اوپر پھر اپنا منصوبے کے تحت یا اپنی حکمت کے تحت وہ حکم کو جاری کریں گے اور چلائیں گے. جیسے بھی پاکستان میں یہ ایشو آج کل اٹھا ہوا ہے، خواتین کا مارچ حقوق نسواں کے عنوان سے. اب اس کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ پشت پناہی حکومت ہی آ کے کرے گی، وہ اگر اجازت دے گی تو وہاں پہ قانونی طور پہ کر سکتے ہیں. حکومت میں جو ادارے انہیں اجازت دیں گے، وہ کس کی اجازت سے یہ کام کر رہے ہیں؟ وہ اوپر بیٹھی ہوئی پارلیمنٹ یا اوپر بیٹھے ہوئے حاکم، ان کی اجازت سے یہ کام کر رہے ہیں. اگر حاکم اس میں نفی کر دے اور حاکم اس بات کا انکار کرے، یا جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں وہ اس کو قبول نہ کریں، تو وہاں پہ ادارے اس کو قابل عمل نہیں قرار دے سکتے. لہذا وہاں پہ رسمی طور پہ یا قانونی طور پہ پرمٹ کے ساتھ جو بھی اقدام کیا جاتا ہے، اس میں گویا کہ حاکم کی رضایت بھی شامل ہے اور حاکم اس کو اجرا بھی کر رہا ہے. لیکن کیسے اجرا کرے گا حاکم؟ وہ ہمیشہ اداروں کے ذریعے سے اجرا کرے گا. اگر ہمارے پاس اداروں میں اجرا کے لیے نہیں ہے، مثلا اگر ہمارے پاس حکم ہم اجرا کریں اور ادارے نہیں ہیں، حکم اجرا کرنا چاہیں اور ادارے نہیں ہیں، تو وہاں پہ اجرا بھی نہیں ہو سکے گا، جاری نہیں ہوگا حکم. یعنی حاکم کی بات کیسے جاری ہوگی؟ اداروں کے ذریعے سے. اب مسائل بعض اوقات حاکم کی طرف سے آ جاتے ہیں، بعض اوقات حاکم کی طرف سے مسئلہ نہیں ہے، اداروں کی طرف سے مسئلہ ہے. بعض اوقات اداروں کی طرف بھی مسئلہ نہیں ہے، حاکم کی طرف بھی نہیں مسئلہ، جن کے اوپر جاری کرنا ہے وہی وہاں پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ آگے سے ممکن ہے کہ مسائل کھڑے کریں. اس لیے مسائل پھر انہی نیت سے، نوعیت کے آتے ہیں. بس سیاست یا پولیٹکس وہ کس طریقے سے چلتی ہے؟ وہ اسی طریقے سے چلے گی، حاکم آیا، وہ حکم جاری کرے گا، حکم پہنچے گا اداروں تک، ادارے اس کو آگے سے چلا کے لوگوں کے اوپر نافذ کریں گے. اب اگر ایک عمل غلط ہے یا صحیح ہے، اس کو ادارہ آ کے سپورٹ نہ کرے، تو وہاں پہ وہ پنپ نہیں سکتا، وجود میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، اسے حکومتی کارروائی کر کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ان اداروں کے اوپر حاکم جو ہے وہ مسلط ہوتا ہے، لہذا اس پورے پروسیس کو سیاست کہیں گے. حاکم کا اداروں تک پیغام پہنچانا یا دستور جاری کرنا یا انہیں ہینڈل کرنا اور ان کے ذریعے سے پورے معاشرے کی تدبیر کرنا، بس حاکم مثل ذہن ہے، دماغ ہے. جو یہ ادارے ہیں یہ بازو ہیں اس کے، یہ اس کے بازو ہیں، اور ان بازوؤں کے ساتھ وہ عمل کن کے اوپر انجام دے گا؟ وہ جن کے اوپر عمل انجام دے گا وہ طبقہ کیا کہلاتا ہے؟ عوام الناس. اس پورے کے پورے پروسیس کو ہم کہتے ہیں کہ हैंडल करना या सियासत करना या पॉलिटिक्स, इमाम अली अलैहिस्सलाम जो नज़रिया हमारे पास इमामत के इनवान से मौजूद है, अल्लाह सुबहान व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पूरी उम्मत और पूरी दुनिया के ऊपर हाकिम इमाम अली अलैहिस्सलाम को बनाया। यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम अल्लाह के कवानीन को इन इदारों के ज़रिए से लोगों के ऊपर, अल्लाह के बंदों के ऊपर जारी करेंगे। अब इमाम अली अलैहिस्सलाम जब जारी करेंगे तो उनके नज़र में ज़ाबते क्या हैं? असल फ़र्क इस तरतीब में, तरतीब एक एतबार से नज़रियाती तौर पे फ़र्क आता है, लेकिन बुनियादी जो फ़र्क है वो अफकार और नज़रियात का है। क्योंकि ये तो बादशाह, तो उसमें भी एक हाकिम है, इदारे हैं और फिर आवाम है। मतलब फिरआउन, अगर वो एक माशरे का बादशाह बना हुआ है फिरआउन, तो ये बादशाहत कैसे चलेगी उसकी? ऐसा नहीं है कि फिरआउन जो है वो कोई उसका इदारे ना बनाए और कोई उसकी मदद ना करे और वो अपने तौर पे मतलब कोई काम कर जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। बल्कि ये किस तरह से वजूद में आएगा? उसके इदारे हैं, फौज भी होगी, अदालतें भी होंगी, अच्छा इसी तरह इंजीनियर्स भी उसके पास होंगे, तालीमी इदारे भी उसने खोले होंगे, वो हुक्म जारी करेगा, ये इदारे काम करेंगे और इदारों के ज़रिए से माशरे के ऊपर काबिल अमल उस दस्तूर को किया जाएगा। इसी तरीके से जमहूरियत में भी है, जमहूरियत में भी यही होता है कि उसमें पार्लियामेंट एक हाकिम को बाइनवाने हाकिम सामने ले आती है, लेकिन हाकिम के इख्तियारात दर हकीकत उस अक्सरियती पार्लियामेंट मेंबरान के पास होते हैं कि जिनकी अक्सरियत के ऊपर हाकिम आगे दस्तूर जारी करेगा। लेकिन उसमें भी यही है कि आप हम पार्लियामेंट और हाकिम को एक करार दे दें और इन्हीं को हाकिम करार दें, और ये हाकिम जब दस्तूर जारी करेंगे तो फिर ये इदारे हैं कि इदारों के ज़रिए से माशरे के ऊपर काबिल अमल होंगे, हत्ता कि निज़ामी इमामत में आ जाएं, उधर भी एक हाकिम है, हाकिम के मातहत इदारे हैं और इन इदारों के ज़रिए से पूरे माशरे के ऊपर काबिल अमल दस्तूर को किया जाएगा। लिहाजा यहाँ पे अब मसला पेश आता है कि हाकिम कौन बने। दूसरा पेश मसला आता है कि हाकिम जब दस्तूर जारी करे तो किन बुनियादों पे दस्तूर जारी करे, यानी उसने ये वाला अमल क्यों अंजाम दिया, ये वाला अमल क्यों अंजाम नहीं दिया। आया वो अपनी मर्ज़ी के ऊपर आज़ाद है या पीछे कोई तफक्कुर है, कोई फ़िक्र है, कोई आइडियालॉजी है, कोई नज़रिया है। अमूमन दुनिया में जो हाकिम बनते हैं, चाहे बादशाहत का निज़ाम हो, चाहे मसलन हमारे पास डेमोक्रेसी या जमहूरियत का निज़ाम हो, या सोशलिज़म या कम्युनिज़म का सिस्टम हो, सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, अमूमन हम देखते हैं कि हाकिमों के पेश नज़र मफाद होता है, उनका मज़हब मज़हब मफाद है। ये मज़ाहब जो पढ़े जाते हैं ये अखलाक में पढ़े जाते हैं, इल्म अखलाक में, जो गरबी अखलाक है उसमें तफसील के साथ है। मसलन नज़रिया लज्जत, नज़रिया मफाद, नज़रिया शहवत, नज़रिया मोहब्बत, नज़रिया खैर, मुख्तलिफ नज़रियात हैं जो गरबी दुनिया में बहुत उसके ऊपर किताबें लिखी गई और मुस्लिम दुनिया में भी उसके ऊपर बहसें की गई हैं, जो कि अखलाक के ज़ैल में हम पढ़ सकते हैं। लेकिन इन्हीं नज़रियात के असरात यहाँ पे मुरतब होते हैं। अगर एक बंदा नज़रिया मफाद, वो उस नज़रिए का हामिल है, मोतकिद है कि तुम सियासत करो या इस कवी तरीन कुदरतमंद तरीन वसीले को इख्तियार करो सिर्फ मफादात को पेश नज़र रखते हुए, मसलन फलां मुल्क के साथ मैंने ताल्लुकात बढ़ाने हैं क्योंकि मेरा उसमें मफाद पाया जाता है, और फलां मुल्क के साथ मैंने ताल्लुकात को आबाद नहीं करना क्योंकि उसमें मफाद मेरा नहीं पाया जाता, ये मफाद की सियासत होगी। अच्छा, फ़लाँ अमल जो अंजाम दिया है अगरचे इंसानियत के ख़िलाफ़ है, आलमी कवानीन के ख़िलाफ़ है, लेकिन मफाद है हमारा, ये अमल से यानी उनके फ़ैसलों से पता लग जाता है कि ये बंदा मोतकिद किस नज़रिए का है। ये मफाद का अकीदा और मज़हब रखता है, इसका मज़हब मज़हब मफाद है। बस हाकिमों में या जो हुकूमत करते हैं इदारों के ऊपर अफराद, उनके पेश नज़र मफाद का मज़हब होता है। बास के पेश नज़र मफाद नहीं बल्कि लज्जत और शहवत है, वो शहवात और लज्जत लेना चाहते हैं, उनके पेश नज़र शहवात। हुकूमत क्या है? शहवात का एक ज़रिया है, इसलिए वो हुकूमत लेके सरदारी चाहते हैं, हुकूमत लेके हाकिम बनना चाहते हैं, वह हुकूमत लेके ये मंजर देखना चाहते हैं कि वो एक हुक्म जारी करें और लाखों अफराद पे वो जारी हो जाए इन इदारों के ज़रिए, जैसे शाही सिलसिले इसी तरह से चलते हैं। मिसाल के तौर पे शाह इधर मौजूद था, अगर शाह ये मजालिम ना भी करता इन सरजमीन इनकलाब में, ईरान में जो पहले तारीकी का जो आलम था, जुल्म सितम का जो दौर था, उसमें शाह हाकिम था। अगर शाह हुकूमत वहाँ पे ना करता बल्कि एक अमीर ताजिर की सूरत में रहता, रह सकता था। वो अगर इनकलाब इस्लामी में ताबे हो जाता इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह के, एक बड़ा नाम ले सकता था वो सियासत की दुनिया में, या एक बाशरफ और बाइज्जत ज़िंदगी बसर कर सकता था। लेकिन रियासत तलबी की शहवत इस कदर उसके वजूद में भरी हुई थी और इस कदर औच पे पहुंची हुई थी कि वो हर चीज़ दाव पे लगाने के लिए तैयार है, लेकिन रियासत तलबी की शहवत से किनारा कश नहीं हो सकता। लिहाजा वो जिल्लत की मौत इस दुनिया में सब लोगों ने देखा, वो उस लोगों को अपने सामने झुकाता था, क्योंकि जो मफाद की सियासत करता है वो लोगों को अपने सामने नहीं झुकाता। अभी ये गर्बी हाँ हुक्मरान हमारे सामने हैं, बरतानिया, अमरीका या यूरोपी ममालिक में, मुमकिन है कि सिर्फ रियासत तलबी ना हो, मफाद की सियासत चाहता हो, वो अपना बस मफाद देखना चाहता है, वो दूसरों को अपने सामने मुमकिन है ना झुकाए। लेकिन शाह को देखें, वो पूरे के पूरे उलमा या गैर उलमा उनको अपने सामने रुकू की हालत तक लेके जाता था और ताज़ीम ज़बरदस्ती करवाता था। बस इधर हमें ये पता लगा, हाकिम वो इदारों को बाज़ुकात इस्तेमाल करके मफाद हासिल करते हैं। बाज़ुकात सियासत होती है सियासत शाहवानी, रियासत तलबी उसमें मतलूब होती है। बाज़ुकात सियासत होती है सियासत माल, सिर्फ माल की शहवत है, माल इकट्ठा करना चाहते हैं। मुख्तलिफ इस तरह से नज़रियात है। बहरहाल हम यहाँ पे ये बात मैंने इसलिए आपकी खिदमत में थोड़ी तफसीली बयान की। इधर देखा जाए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, अगर उनके पास इख्तदार आ जाए और ये कवी तरीन हुकूमत का वसीला और ज़रिया आ जाए, वो किस नौयत की सियासत चाहेंगे? उनकी बुनियाद सियासत की क्या है? यानी उनसे जो अमल सादिर या दस्तूर सादिर होगा उसका मीज़ान और मेयार क्या है? वो क्या वो मफाद की सियासत करेंगे इमाम अली अलैहिस्सलाम? क्या वो रियासत तलबी की सियासत करेंगे कि उनके हाथ से हुकूमत ना निकले? क्या वो लोगों को अपने सामने झुकाना चाहेंगे जितने भी लोग हैं? क्या उनके पेश नज़र, उनका नज़रिया क्या है इमाम अली अलैहिस्सलाम का इस तौर पे, कि अगर इंसान हुक्मरान बन जाए वो इस इकतदार के ऊपर आने के बाद वो किस तरीके से उस कवी तरीन और इस ताकत के अजीम मंबे को इस्तेमाल करें? इसको हम आए नहजुल बलागा से पढ़ते हैं। नहजुल बलागा में 425 नंबर हिकमत कसार है। नहजुल बलागा क्योंकि तीन हिस्सों में तकसीम होती है, एक नहजुल बलागा का पहला हिस्सा है जो खुतबात के ऊपर मुश्तमिल है, दूसरा नहजुल बलागा का हिस्सा मकतूबात खतूत जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने लिखे उन पर मुश्तमिल है, और तीसरा नहजुल बलागा का हिस्सा हिकमत क़िसार छोटे छोटे हिकमत के अक़वाल हैं, कलाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हैं। इन तीन के ऊपर ये नहजुल बलागा जम की गई है। अलबत्त इस जम में सैयद रज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस चीज़ को मेयार करार दिया वो बलागत था। उनकी नज़र में जो औज बलागत के ऊपर पहुँचे हुए कलाम थे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के, वो उन्होंने इस तरतीब से जमा कर लिए। ऐसा नहीं है कि नहजुल बलागा के अलावा कोई और कलाम है नहीं इमाम अली अलैहिस्सलाम का। अलबत्त इस हम जो पढ़ रहे हैं ये मौजू, हम सिर्फ नहजुल बलागा के दायरे में रहते हुए इसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि नहजुल बलागा का उर्दू तर्जमा मौजूद है और उलमा में इसकी मकबूलियत बे इंतहा मौजूद है और एक नए एतबार ये किताब पैदा कर चुकी है, इसलिए इस किताब से इस मौजू को मुतालिया किया जा रहा है। आपके सामने ये जो कलिमात हैं हिकमत खिसार तीसरे हिस्से से, जिसमें छोटी छोटी उनकी हिकमतें और कलाम मौजूद है, उससे इंतखाब किया गया है। 425 नंबर है ये हदीस है 425 नंबर। उर्दू में मुमकिन है कि कोई और नंबर हो, यानी ये नंबरिंग का थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है, मुमकिन है दो तीन नंबर पहले हो या दो तीन नंबर बाद में हो। 425 नंबर में यह हिकमत क़िसार है। वसुइला अलैहिस्सलाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया, अयुहमा अफ़दल, कौन सी चीज़ अफ़दल है, अल अदल अविल जूद, क्या अदल अफ़ल है या जूद व सखा सखावतमंदी अफ़ल है। दोनों ही बाशरफ़ खसलतें हैं, क्योंकि बाज़ुकात ये भी हो सकता है तसव्वुर कि हाकिम हुकूमत करे और उस हुकूमत के पेश नज़र उसके पेश नज़र फ़क़त तालीम देना है। बाज़ लोग होते हैं हाकिम बनते हैं, उन्होंने खैर का मज़हब पढ़ा हुआ है, मज़हब खैर चाहते हैं। खैर से क्या मुराद है कि लोगों की खिदमत करें, रफ़ाए आमा जिसे कहते हैं, हम अपनी आम सादा ज़ुबान में कहते हैं रफ़ाए आमा के लिए वो इक्तदार संभालना चाहता है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे, ताकि फ़क्र ख़त्म करे, गुरबत ख़त्म करे, ताकि उस जगह पे लोग अमन अमान से रहें। उसके पेश नज़र बस ये है, कोई दीन, कोई आइडियोलॉजी, कोई नज़रिया, कोई पेश नज़र नहीं है। उस हाकिम के पेश नज़र ये है कि वो लोगों के अंदर से फ़क्र व गुरबत को दूर करे और एक बेहतरीन अच्छी ज़िंदगी उन्हें फराहम करे। जैसे अभी आप बाज़ गरबी ममालिक के ऊपर मुमकिन है कि इस नज़रिए को तत्बीक कर सकें, इसे मज़हब खैर से ताबीर किया जाता है। वो खैर चाहते हैं लोगों के लिए, वो लोगों के लिए हस्पताल बनाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस खोलेंगे, बेहतरीन रोडें बनाएंगे, बेहतरीन इमारतें और घर बनाएंगे, गरीबों की मदद करने के लिए कोई सिस्टम बनाएंगे ताकि वो ज़िंदगी बसर कर सकें। मज़हब खैर, इसलिए यहाँ पे मुकायसा किया गया, अदल है या जूद, आया अदल अफजल है या जूद, जूद व सखा सखावतमंदी वो अफजल है। आपने मुलाहिज़ा किया कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की सियासत की बुनियाद आया मज़हब खैर है या मज़हब अदल है, उनका नज़रिया नज़रिया अदल है या नज़रिया जूद व सखा है, क्योंकि खैर के अमूर भी छोटे अमूर नहीं होते, वो भी बाशरफ़ अमूर हैं। अदल की तारीफ़ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने की इधर ही, और जूद की भी तारीफ़ की। मैं आपके सामने जूद व सखा का एक नमूना पढ़ देता हूँ अलकाफ़ी से। अलकाफ़ी में ये वाक़या वारिद हुआ है और इसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने हदीस बयान की है। इस हदीस में बयान करते हैं कि अन अबी अब्दिल्ला अलैहिस्सलाम, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से ये हदीस है, फरमाते हैं कि ऊतिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे उसारा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बास कैदियों के पास लाया गया। कैदी थे, जंगों में कैदी पकड़े गए थे। आप जानते हैं जंगों में जो कैदी पकड़े जाते हैं उनकी सज़ाएं सख्त होती हैं, बास को कत्ल किया जाता है, बास को मुमकिन है कि एक तवील अरसा कैदोबंद में रखा जाए, बास से मुमकिन है मजदूरियाँ कराई जाएँ, बास को ग़ुलाम बना लिया जाए, मुख्तलिफ तरह के उमूर हैं कि जो हाकिम के ऊपर, उस माशरे के हाकिम के ऊपर मौकूफ़ होता है कि वो क्या इसके लिए सज़ा तजवीज़ करेगा। कैदी लेके लाए गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अलकाफ़ी में जिल्द नंबर 4 सफ़ा 51 के ऊपर हदीस मुबारक मौजूद है। आप इधर ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि नज़रिया इमाम अली अलैहिस्सलाम का हमें पता लग जाए, सियासत में क्या नज़रिया है। बहुत सारे नेक काम आप ला सकते हैं, और आजकल यही बहसें हमारी चलती हैं पाकिस्तान में, बिलखसूस जब हम बहसें करते हैं वो कहते हैं वो डैम बनाएगा, वो बिजली देगा, वो फलां जो है वो तालीम सबके लिए आम कर देगा, फलां गुरबत ख़त्म कर देगा। आया सियासत की बुनियाद ये नुकात हो सकते हैं, इस मसले में इमाम अली अलैहिस्सलाम का क्या नज़रिया है, ये मुहिम चीज़ है। हर खैर के ऊपर क्या हाकिम जो है वो अपनी बुनियाद रख के सब इदारों का रुख उसकी तरफ मोड़ दें या नहीं, इस हवाले से इमाम अली अलैहिस्सलाम ख़ास नज़रिए के मालिक हैं। और हकीकत यही है, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो नहजुल बलागा की ताबीरात हैं उसमें ख़ास नज़रिए के मालिक हैं। वो सियासत में जब हुकूमत करना चाह हुकूमत में आके जब सियासत करना चाहते हैं और माशरे को चलाना चाहते हैं, तो जिस चीज़ को मीज़ान और मेयार बना के माशरे को चलाएंगे वो अदल है, वो कोई और नेकी नहीं है, वो कॉलेजेस और स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ बनाना नहीं है, वो लोगों के पेट भरना फ़कत नहीं है, वो कैदियों को आज़ाद कराना फ़कत नहीं है, उनके पेश नज़र अदल है। अदल के वसीले के ज़रिए से माशरे की इस्लाह करेंगे, उस टेढ़ेपन को दूर करेंगे अदल के ज़रिए से। मतलब कोई कह सकता है माशरे में जो इन्हराफात और टेढ़ापन है, जैसे एक लकड़ी टेढ़ी हो जाती है, एक लोहा टेढ़ा हो जाता है, आपने लोहे को सीधा करना है। कोई कहता है यार फलां मशीन से सीधा हो जाएगा, कोई कहता है नहीं नहीं फलां मशीन से होगा, कोई कहता है फलां तरीका इख्तियार करो। अब कई तरीके हैं उस टेढ़ेपन को ख़त्म करने के लिए, और कई नज़रियात हैं इस हवाले से। इमाम अली अलैहिस्सलाम का क्या नज़रिया, ये टेढ़ापन कैसे ख़त्म होगा? आया ये तालीम के ज़रिए टेढ़ापन ख़त्म होगा? आया ये गुरबत और फ़क्र दूर करने के ज़रिए से टेढ़ापन ख़त्म होगा? आया वहाँ पे जिद्दत पसंदी और मॉडर्निज़्म ले आया जाए, जैसे कि अभी ये मार्च, दर हकीकत उसके पीछे बुनियाद यही है, शैतानी एक मंसूबा है। मॉडर्निज़्म के नाम से वो सामने आके मर्द और जन उन दोनों को, कि जबकि अल्लाह ने इन दोनों की खिलकत में एक तफरीक पैदा की और ज़िम्मेदारियाँ जुदा की हैं, लेकिन वो अल्लाह की इस खिलकत का और तबीयत और फितरत का इनकार करके यकसां दोनों को खड़ा करना चाहते हैं। और किसी ज़ाबते के, यानी एक हाकमियत इलाही से निकल के हाकमियत नफ्स की हुकूमत को वो चाहते हैं। जैसा कि ये मकूला है कि जिस इंसान का जिस्म हो उसकी मर्ज़ी, वो उसके साथ क्या करे, हालांकि इसको गर्ब भी कामलन काबिल अमल नहीं करार देता। इसलिए अगर एक इंसान ऊंचा सुनना चाहता है और उसके ऊंचा गाना सुनने से दूसरा डिस्टर्ब होता है, तो वहाँ पुलिस पकड़ के ले जाएगी। वो कहेंगे कि तुम ऐसी हद बंदी करो, बेशक जो मर्ज़ी सुनो। इसी तरीके से एक बंदा है, बाज़ ममालिक में तो उन्होंने ख़ुदकुशी की इजाज़त दे दी, लेकिन बाज़ ममालिक में ख़ुदकुशी की इजाज़त नहीं है। बाज़ जगहों पर हिजाब की पर पाबंदी है, ख़ुद भी उनके लिए काबिल अमल ये नहीं है, वो ये समझते हैं। लेकिन फितने खड़े करना, आलम इस्लाम में उन्होंने फितने खड़े करना है। खैर, हम इस बहस से इन्हराफ ना करें तो बेहतर है, लौट के आए इस जगह पे कि एक टेढ़ापन है, लकड़ी या लोहा टेढ़ा है, उस लोहे को सीधा करने का क्या तरीक़ेकार है? कोई कहता है फलां मशीन में डालो तो सीधा हो जाएगा, यानी साइंसी तरीके से सीधा करो। कोई कहेगा ज़मीन में गाड़ के देसी तरीके से मसलन सीधा करो। कोई कहेगा फलां तरीक़ेकार इख्तियार करो, उससे सीधा हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं, एक ही टेढ़ेपन को सीधा करना है, लेकिन मुख्तलिफ नज़रियात हैं। इसी तरह एक ही माशरे को आपने पुरअमन करना है, लेकिन मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। अब खैर की दुनिया में ये बात की जा रही है, दूसरी तरफ नहीं। बाज़ अफराद कहें कि जूदो सखा के अंबार लगा दो, कोई फ़कीर ही ना रहे। जब फ़कीर नहीं रहेगा, ना चोरी चकारी होगी, ना डाके पड़ेंगे, ना कत्लो गारत होगी, कुछ भी नहीं होगा। बाज़ के ये नज़रिया बड़े पैमाने पे ये नज़रिया मौजूद हैं। इसलिए वो ये कहते हैं कि रफाई काम ज़्यादा होने चाहिए, गरीबों को भी अमीर कर दो। बाज़ का नज़रिया ये तालीम के ज़रिए किया जाए, पूरे मुल्क में तालीम आम कर दो। तालीम आएगा तो ख़ुद उनके पास मालूमात आएंगी, मालूमात आएगा तो शऊर आएगा, और शऊर आएगा तो वो सीधे काम करेंगे, मसला ही ख़त्म हो जाएगा। बाज़ ये कहते हैं कि नहीं, आप वहाँ पे मॉडर्निज़्म लाएं, जिद्दत पसंदी लाएं, साइंस को लेके आएं। जैसे भी सोशल मीडिया पे बाज़ ऐसे बहकाने वाले प्रोफेसर हजरात मौजूद हैं, वो वाज़े तौर पे आके कहते हैं कि जैसे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के मारूफ प्रोफेसर हैं, उनका वाज़े उन्होंने नज़रिया दिया, साइंस के ज़रिए से उसको दुरुस्त किया जाए। यानी मॉडर्निज़्म लाएं, साइंस को दखल दें और दीन को एक तरफ कर दें। जैसे कि गर्ब में, उन्होंने मिसालें भी यही दी कि गर्ब में जब तक दीन था, तरक्की नहीं माशरे में हो सकी। और हमारे मुल्क की पसमानदगी की असल वजह भी यही दीन है। आप दीन को एक तरफ कर दें और साइंस की दुनिया को लेके आएं, और खुले दिमाग से बैठें, अपने आप को आप वसी रखें, अपना विजन वसी रखें, तो आप देखेंगे कि माशरे के मसाइल हल हो जाएंगे। आए हम पूछते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम से कि या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, आपकी निगाह में ये जो माशरे के अंदर इसलाह है, माशरे का टेढ़ापन है, या माशरे के अंदर आपने सियासत करते हुए तदबीर करना है और लोगों को मैनेज करने हैं, लोगों के उमूर को इदारों के ज़रिए से, आप किस चीज़ को बुनियाद रखेंगे? आया तालीम को, आया जूदो सखा को, या आया अदल को? इसलिए आप इस वाक़े को पहले जूदो सखा की कीमत जानें कि दीन इस्लाम में जूदो सखा की कीमत क्या है। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कैदी लाए गए, जब कैदी लाए गए, फ़कद दमा रजुल मिन होम, इन कैदियों में से एक बंदे को हाजिर किया गया, ले युद्रबा उनू को हूँ, ताकि उसकी गर्दन उड़ा दी जाए, यानी उसके कत्ल और फांसी के ऑर्डर आ चुके थे। फ़काल लहू जिब्राईल, کہ اسی ٹائم آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے فرمایا اخر ھذا الیوم یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، آج کے دن کو مؤخر کرو، آج نہ اسے سزا دو. فردہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سزا نہیں دی اور پلٹا دی سزا. واخرج غیرہ حتی کان ہوا اجرہم فدعا بہ لیضرب عنقہ، یہاں تک کہ انہوں نے اسے اس جگہ سے نکالا اور پھر کوئی اور دن معین کیا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا تاکہ اس کی گردن اڑا دی جائے. فقال له جبرائیل، پھر جبرائیل علیہ السلام آ گئے، یعنی اللہ کی جانب سے پیغام لے کے آ گئے، یا محمد، اور فرمایا جبرائیل نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، ربک یقرئک السلام، آپ کا رب آپ کو سلام کہہ رہا ہے. ویقول لک، اور اس نے آپ کے رب نے آپ کے لیے پیغام دیا ہے، ان اسیرک ھذا، یہ جو قیدی ہے جس کی پہلے سزا تاخیر ہوئی اور آج اس کا دن دوبارہ آ گیا ہے کہ اس کی گردن اڑائی جائے، یہ قیدی یطعم الطعام، یہ لوگوں کو کھانے کھلاتا ہے. وَيَقْرِئُ الضَّيْفَ، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے، کہ رات کو آئے دن کو آئے، مہمان نواز کھلا دل ہے، گھر حاضر کر دیتا ہے. وَيَصْبِرُ عَلَى النَّائِبَةِ، مشکلات پہ صبر کرتا ہے، چیختا چلاتا نہیں ہے جب مشکلات آ جائیں، مثلا دردیں اٹھائیں، مسائل کھڑے ہو جائیں، پیسہ ختم ہو گیا ہے، صحت اس کی چلی گئی ہے، بچے کوئی مر گئے ہیں، کسی نے ستم اور جفا کر دی ہے، اہانت توہین کر دی ہے، صبر کرتا ہے وہ. اس کا بہت تذکرہ ہے روایات میں اس بندے میں، اگرچہ مشرک ہے یہ بندہ، اگرچہ مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں آگے بڑھ کے حملے کرنے کے لیے آیا اور اسلام کو تباہ اور نیست و نابود کرنے کے ارادوں کے ساتھ آیا اور پکڑا گیا، لیکن اس کی خوبیاں دیکھیں، مشکلات پہ صبر کرتا ہے. وَيَحْمِلُ الْحَمَلَاتِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے فرمایا، اِنَّ جبرائیل اخبرانی فِيكَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اس شخص کو مخاطب کر کے کہا، جبرائیل اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور جبرائیل نے مجھے یہ پیغام دیا ہے تمہارے بارے میں کہ بقضا و قضا کہ تم یہ کام کرتے ہو، وَقَدْ اَعْتَقْتُكَ، میں تم کو آزاد کرتا ہوں، اعتقتک، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، کیونکہ تم میں یہ خوبیاں ہیں، مہمان نواز ہو، تم کھانے کھلاتے ہو، غریب پروری کرتے ہو، مہمان نوازی بھی کرتے ہو، کیونکہ مہمان نوازی غریب پروری سے ہٹ کر ہے، وہ تو اپنے عزیز رشتہ دار دوست احباب یا کوئی بھی مسافر آ جائے اس کے لیے پیش ہونا ہے، مشکلات پہ صبر کرتے ہو. پھر آگے فقال لہو، اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، ان ربک لیحب ھذا، کیا آپ کا رب ان سب چیزوں سے محبت کرتا ہے؟ فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، میرا رب ان سب چیزوں سے محبت کرتا ہے. فقال، اسی وقت اس شخص نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں. والذی بعثک بالحق نبیا، اور یہ وہ ذات ہے کہ جس نے آپ کو حق نبی کے طور پہ حق کے ساتھ بھیجا اور مبعوث کیا. لا رددت عن مالی احدا ابدا، کہ میں اپنے کبھی بھی میں نے اپنے مال سے کسی کو پلٹایا نہیں ہے، یعنی میرے اندر یہ خوبیاں ہیں اور میں نے کبھی کسی کو ویسے ہی نہیں پلٹایا. یعنی آپ نے جود و سخا کو ملاحظہ کیا کہ جود و سخا اس قدر بڑی صفت ہے کہ اگر ایک اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے قیدی بنا کے لایا جائے اور وہ ان خصلتوں کا مالک ہو تو اس کی سزا اگر پھانسی اور گردن اڑانا ہو وہ بھی ٹل سکتی ہے، اس قدر جود و سخا بڑی نعمت ہے. بلکہ ایک جگہ پہ وارد بھی ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا، وہ شخص زمانے جاہلیت میں حالت شرک میں مر گیا، تو جیسے ہی تذکرہ ہوا اور اس کی طرف توجہ گئی تو کہا کہ وہ کہاں ہے، تو رسول اللہ نے اس کی تعریف کی، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو کافر مشرک تھا، کہا تھا نہیں، وہ سخی انسان تھا، اس کے پیسوں کے ہاتھ سے ہاتھ میں اس کے کوئی تالے نہیں لگے ہوئے تھے. سخاوت کو اسلام نے اتنی قیمت دی ہے، اس لیے یہاں پہ सवाल करने वाला साहिल परेशान हो गया कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से उसने पूछा, मुमकिन है हाकिम हो, क्योंकि बैकग्राउंड इधर नहीं आया इस रवायत का कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने किसी हाकिम से गुफ्तगू की कि उसे वाली बना के भेज रहे हैं या क्या है, लेकिन ये सवाल आया सुइला अलैहिस्सलाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम से फरमाया गया, अय्युहुमा अफ़ज़ल, दोनों में से कौन सा अफ़ज़ल है, अल-अदल अविल जूद, अदल अफ़ज़ल है या जूद व सखा, आपने जूद व सखा का नमूना मुलाहिज़ा किया। फ़क़ाल, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल-अदल यदअल उमूरा मौज़िअहा, अदल की पहले तारीफ़ की। अदल कहते हैं उमूर को उनकी जगहों पे रखना, मसलन जिसका जो हक बनता है उसको उस हक पे रखना। मसलन अगर अदालतों का हक फैसले करना बनता है तो उनको उसी दायरे में रखना चाहिए, उनको कोई फ़ौज की पर मुसल्लत नहीं कर देना चाहिए, उनको कोई मुजाहरों के लिए रोडों की पर नहीं आना चाहिए, और वही जज जो लोगों के हकूक़ का दिफा करने वाले हैं वही गाड़ियाँ तोड़ने लग जाएँ। पाकिस्तान में ताज़ा मंजर हैं जो 2020 में आप मुमकिन है कि देख चुके हों या 2019 के अवाखिर में, कि जो कौम के हकूक़ के ज़ामिन थे और कानून बताने वाले लोग थे और फैसले करने वाले लोग थे वही लोगों की ज़ाती मिल्कियत के ऊपर और अमवाल के ऊपर हमलावर हो गए। ये उमूर, ये ज़ुल्म है, ये इदारे का ज़ुल्म है, एक बंदे का ज़ुल्म नहीं है। इमाम फरमाते हैं अल-अदल यदअल उमूर, उमूर को रखो मवाज़िअहा, जहाँ पे उनको रखने का हक बनता है, उमूर को जहाँ रखने का हक बनता है वहाँ पे उसे रखो। मसलन अगर एक आलिम है उसके लिए तालीमी इदारा है, उसे कोई डॉक्टरों का हेड नहीं बना दिया जाएगा, जिसने मेडिकल पढ़ी नहीं है तो उसे जाके डॉक्टरों का तो हेड नहीं बनाया जाएगा। डॉक्टरों का हेड किसको बनाया जाएगा, कोई स्पेशलिस्ट है या कोई सर्जन है या कोई पढ़ा लिखा या तदबीर करने वाला बंदा है, उसी के वो हाकिम बनाया जाएगा। मसलन जनाब सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत अजीम शख्सियत हैं कि मासूमीन के बाद सबसे बुलंद तर रुतबा जनाब सलमान फ़ारसी का वारिद हुआ है, लेकिन जंगों में हीरो मालिक अश्तर हैं, जंगों के हीरो मालिक अश्तर हैं। हाँ, सियासत की दुनिया में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने मदाइन की सियासत उनके हवाले की, हाकिम बनाया, लेकिन जंगों में कमांडर नहीं बनाया जनाब सलमान को। इसी तरीके से जनाब अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत अजीम शख्सियत कि जुल्म के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज करने वाली ऐसी शख्सियत कि जो खौफ ज़्यादा नहीं होती ईवानों से, जो लोगों की कसरत से खौफ ज़्यादा नहीं होती, उसे अबू ज़र कहते हैं, जो एक ऐसे माशरे में हक आवाज़ बुलंद कर दे कि जहाँ पे खौफ व हिरास की फ़ज़ा छाई हुई है और चूँ कोई नहीं कर सकता, वहाँ पे अबू ज़र में हिम्मत आती है कि वो इन ईवानों को हिला के हक बात को बुलंद करते हैं। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जंगों में सपासालार नहीं बनाया उन्हें, क्यों नहीं बनाया, उमूर को उस जगह पर रखें जहाँ पर उसे रखने का हक है। लिहाजा फौज पूरी की पूरी कौम की पर हाकिम नहीं बन सकती, ये तो सेकुलर और ला दीन की निगाह में भी गलत है कि फौज आके पूरी कौम और मिल्लत और रियासत के ऊपर हाकिम बन जाए। मार्शल ला सबसे बदतरीन निज़ाम हुकूमत करार दिया जाता है, क्योंकि उसमें डंडे के ज़रिए से किसी कौम के ऊपर एक जर्नैल आके हाकिम बन जाता है, लिहाजा उसको सबसे बदतरीन, हती कि इतना बदतरीन है कि ममालिक कानूनी तौर पर इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक उससे लोग ताल्लुक़ तोड़ेंगे, ममालिक ताल्लुक़ तोड़ देंगे, लेकिन हमारे यहाँ वो एक इदारा वो अपनी हदूद छोड़ता है, जिसने कौम के घरों की और हदूद की हिफाजत करनी थी वो हिफाजत करने की बजाय वही कौम को लूटने वाला इदारा बन जाए, वही रियासत के ऊपर डिक्टेटर बन के आके बैठने वाला इदारा बन जाए। लिहाजा अदल के ख़िलाफ़ है, यज़ाउल उमूर मवाज़िअहा, उनको बाउंड्रीज़ के ऊपर फ़ौज को होना चाहिए, फ़ौज को डिफेंस सिस्टम में होना चाहिए, उस डिफेंस सिस्टम में कोई अदालतों को बेजा दखल नहीं देना चाहिए, उन्हें इतना कुव्वत दे के उसमें दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। लिहाजा उन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कुल, ये तो इज्तमाही तौर पर आपकी खिदमत में चंद मैं मिसालें पेश कर रहा हूँ, इनफरादी तौर पर भी इसी तरह है। आदिल इंसान वो कहलाता है कि यज़ाउल उमूर मवाज़िअहा, जो उमूर को उनकी जगहों के ऊपर रखे, अगर नमाज का वक्त है नमाज पढ़े, अगर खानवादे को टाइम देने का वक्त है खानवादे को टाइम दे, अपनी फैमिली को टाइम दे, अगर जॉब पे जाने का वक्त है जॉब पे जाए, या ताजिर है तो तिजारत करे। चीज़ों को उनकी औकात के ऊपर रखता है, जो औकात के ऊपर नहीं रखता वो जालिम कहलाता है। इज्तिमाई और सियासी दुनिया में भी इसी तरह है। सियासत के मैदान में हर अमर की एक जगह अल्लाह ताला ने करार दी है, यानी हर अमर का हक बनता है कि इस जगह पे उसे रखा जाए। अगर उस शय को या उस अमर को उसकी जगह पे रख दें, ये अदल है। वो मसलन आप जूदो सखा को अदल के दायरे से निकाल के वसत दे दें, जैसे कि गर्ब ने यही काम किया। उन्होंने साइंस एक मुफीद चीज़ है, साइंस की नफ़ी नहीं की जा सकती। साइंस से बहुत इस्तफादा बशरियत ने किया, साइंस के ज़रिए से चीज़ों को ईजाद करके आसानियां पैदा की, और साइंस के बहुत सारे कमालात हैं। लेकिन आया इसको इतनी वसत दी जा सकती है कि वो अदल के मफहूम पर भी गलबा हासिल कर लें, वो तौहीदी नज़रियात के ऊपर भी गलबा हासिल कर ले, हत्ता कि वो इंसानियत के ऊपर भी गलबा हासिल कर ले। इसी तरीके से बायोलॉजी ने बहुत खिदमात अंजाम दी हैं इंसानियत की, लेकिन आया बायोलॉजी इस कदर वसत पैदा कर सकती है कि वो तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स माशरे के उनके ऊपर हाकिम बन जाए, यानी डॉक्टरों को हाकिम बना दें हम उसके ऊपर, या उनकी एक जगह है, उनकी जगह हस्पताल और रिसर्च सेंटर हैं, उन्हीं जगहों पे उनको महदूद किया जाए। और यही चीज़ है, अभी जो कोरोना पूरी दुनिया में फैला हुआ है, एक कवी एहतमाल यही दिया जा रहा है ये साजिश ही है, क्योंकि इसे लेबॉरेटरी में तैयार किया गया है। कोरोना पहले से ही हैवानों में मौजूद है, एक ऐसा वायरस है, लेकिन और हैवानों से ही आता है, बिल्ली है या परिंदे हैं बाज़, लेकिन मोहलिक कितना नहीं होता कि बंदे मर जाएं। उसे मोहलिक सतह पर पहुंचा के और उसको वबाई तौर पे फैलाना साजिशी अनासर महसूस होते हैं। अभी तो एक फिल्म भी, उसमें कोरोना नहीं है, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कई साल पहले उन्होंने फिल्में बनाई और बनाई हुई हैं। एक शहर को हयाती किसी वायरस के ज़रिए से उन्होंने दीवाना वर बना दिया और पूरा का पूरा शहर उसमें मुब्तला हो गया, और ये बायोलॉजिकल जंग की तरफ इस वक्त दुनिया जा रही है। और ये वही सियासत है कि वो एक अमर को मनफी तौर पे इस्तेमाल करके कैसे हाकमियत दे रहे हैं। यानी अगर आप एक उमूर को उनकी जगहों पे ना रखें तो वो एक ऐसा जुल्म बन जाता है जिससे इंसानियत बिलक बिलक के हलाक हो जाती है, तबाह बर्बाद हो जाती है। इसलिए यही बायोलॉजिकल जो हमारे पास डिपार्टमेंट है, इसी ने एक वायरस को, अभी बहुत सारे वायरस इजाद किए हुए हैं, अब तो बम हैं इस तरह के, वो एक बम उधर फाड़ें वो सारे के सारे उधर मर जाएंगे, और बदतरीन तरीके से मरेंगे, इतने बदतरीन तरीके से, ना एटम बम से मरते हैं ना केमिकल बम से मरते हैं, तड़प तड़प के मरेंगे। क्यों ये अमर अंजाम पा रहा है? क्योंकि वो जुल्म की राह के ऊपर निकल गया, हदूद पार की, उसकी जहाँ जगह थी उस जगह से उसे वसअत दी गई, या उस जगह से उसे कम किया गया, कम करें तब भी मर जाएंगे। इदारा है वो मौजूद ही नहीं है कि तरक्की करे, कोई चीज़ बनाए, दवा बनाए, ये तफरीत है। जैसे कि रहबर मुअज़्ज़म, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत नज़रिया दिया है, क्योंकि मुफक्किरीन में से हैं रहबर मुअज़्ज़म, इस्लामी मुफक्किरीन में सबसे अजीम और सबसे बेहतरीन इस दौरे हाज़िर में मुफक्किर और रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनाई हैं। उन्होंने तमद्दुन इस्लामी का एक नज़रिया पेश किया है। तमद्दुन इस्लामी यानी तरक्की इस्लामी, एक माशरा मॉडर्न बने लेकिन उसकी बुनियादें इनकलाब इस्लामी व नज़रियात इस्लामी हों। उन्होंने फिर मराहिल बयान किए। तमद्दुन इस्लामी अव्वल आगाज़ नहीं है, और बाज़ ऐसे अफराद हैं जो हौज़े इल्मिया में हैं, इश्तबाहन उन्होंने इस नज़रिए को पढ़ा तो कहा नहीं, पहली यही बुनियाद है, मॉडर्न बने, जैसे कि गर्बी बाज़ सेकुलर लोग कहते हैं। रहबर मुअज़्ज़म ने मौजूदा, क्योंकि एक तवील हुकूमत उन्होंने अरसा हुकूमत की है और क्राइसिस देखे हैं, तमाम मसाइल को उन्होंने देखा है, तो वो इस नतीजे पे पहुँचे कि अगर एक रियासत ख़ुद तरक्की करके ख़ुद मुख्तार ना हो, वो रियासत मुस्तकबिल में तबाह कर दी जाएगी, वो बर्बाद कर दी जाएगी। और ये जो तरक्की के उमूर हैं, ये उस वक्त काबिल अमल हो सकते हैं कि जब एक रियासत में ऐसे दानिश्वर, ऐसे स्कॉलर्स और इस तरह के पढ़े लिखे अफराद आएँ जिनकी अनथक मेहनत के नतीजे में तरक्की वाले उमूर जन्म लें। अब आपने मुलाहिज़ा किया कि उमूर को अपनी जगहों पे रखना वो इस तरीके से हमारे सामने आता है। बहरहाल, हम अदल की पहले देखें تعریف دیکھیں، العدل یضع الامور مواضعها، عدل یہ ہے امور کو ان کی جگہ کے اوپر رکھا جائے، اس کی جگہ سے زیادہ اسے وسعت نہ دی جائے. پھر فرمایا امام علی علیہ السلام نے والجود، جود کیا ہے؟ یخرجها عن جهتها، یخرجها یہ نکال لیتا ہے، جود یعنی سخاوت اور جود و سخا، یہ ان امور کو باہر نکال دیتا ہے ان کی جانبوں سے. کیا مطلب؟ یعنی امور جب اپنی جگہ پہ رکھے ہوں گے تو ان کے اطراف ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یقیناً ان کے اطراف ہوں گے. مثلاً ایک امر کو آپ نے رکھا، بالفرض آپ سیاسی امور میں ڈیفنس سسٹم لے لیں، یا سیاسی امور میں حاکم کو ہی آپ لے لیں، حاکم کی کیا حدود ہونی چاہیے؟ وہ حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں، باؤنڈریز. امام فرماتے ہیں جب جود و سخا کیا جائے تو وہ ان امور کو، مثلاً امر ولی ہے، ولی بنانا ہے کسی جگہ کا، گورنر بنانا ہے، امر دفاع ہے، دفاعی طور پہ لشکر کو بنانا ہے، امر تعلیم ہے، تعلیمی ادارے ہیں، امر اقتصاد ہے، اقتصادی اکنامک سے مربوط ادارے ہیں جو اکنامیکل سسٹم کو چلاتے ہیں، ہر ایک اپنا ایک دائرہ ہے. جب جود و سخا آتا ہے تو وہ اس کو دھکیلتا ہے اس کی حدود سے باہر، اس کو شہوات اور بغاوت کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کو افراط کی طرف دھکیل دیتا ہے. لہذا الجود یخرجها عن جهتها، امور کو ان کی جوانب سے باہر نکال دیتا ہے جود. والعدل سائس عام، عدل وہ سیاست ہے جو عموم تمام ڈپارٹمنٹس اور تمام خیر کے امور اور جتنی اخلاقی فضائل موجود ہیں، تعلیم ہو گئی، سخاوت ہو گئی، شجاعت ہو گئی، یا اسی طریقے سے خدمت خلق ہو گئی، غریب پروری ہو گئی، مہمان نوازی ہو گئی، مصیبت میں کسی کا ساتھ دینا ہو گیا، جتنی بھی خصائل اور خصلت اعلیٰ خصلتیں ہیں، ان عمومی طور پہ سیاست ہے، وہ عمومی طور پہ ان سب کی تدبیر عدل کرتی ہے. یعنی یہ ساری کی ساری خصلتیں اس وقت اعلیٰ اور پاکیزہ اور بلند خصلتیں کہلائیں گی جب عدل کے ماتحت ہیں. سائس عموم عام سے کیا مراد ہے؟ سیاست کرنے والا ہے عدل، یعنی تدبیر کرنے والا ہے، یعنی ان کو خیر بنانے والا عدل ہے، ان کو خیر کے دائرے میں رکھنے والا عدل ہے. جود اس وقت تک، جود و سخا ایک اچھی صفت ہے جب عدل کے تحت ہے. اگر عدل کے دائرے سے باہر آ جائے ظلم ہے. یہ مقولہ تو بعد میں، کیونکہ مسلمان امت اسلامیہ میں اس مسئلے کے اوپر بہت جھگڑے ہوئے، عدلیہ فرقے ہمارے سامنے آئے، عدلیہ کے نام سے فرقے پہچانے گئے جیسے معتزلہ ہیں اور امامیہ شیعہ اثناشری ہیں، لہذا اس میں یہ والی بحثیں طویل کی جاتی ہیں جس کی ابھی گنجائش نہیں ہے. ہم اسے سیاست کے نقطہ نظر سے دیکھیں. امام کیا فرما رہے ہیں؟ بہت اہم جملہ ہے نجم البلاغہ میں، کا بہت اہمیت کا حامل جملہ. العدل سائس عام، آپ کسی کی ایک نیکی کے اوپر فقط نگاہ نہ کریں، دیکھیں کہ وہ نیکی اس کے اندر جو ہے وہ عدل کے تحت ہے یا عدل سے باہر ہے. اگر عدل سے باہر ہے تو ظلم ہے، اگر عدل کے دائرے میں ہے تو وہ عدل ہے، وہ ظلم ہے. وہ جود کب تک عدل ہے، کب تک صفت خیر ہے؟ جب تک عدل کے سیاست کے ماتحت ہے. یعنی عدل آ کے ان تمام انسانی بالا اور عظیم خصلتوں کی تدبیر کرتے ہوئے ان کے دائرے میں اسے رکھتی ہے، یعنی سیاست کرتی ہے ان کے ساتھ، مینج کرتی ہے عدل آ کے. سائس عام، اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے؟ عدل کا دائرہ اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ کوئی ایسی خصلت انسانی نہیں ہے کہ جو اس کے مقابلے میں کھڑی ہو سکے. عمومی طور پہ سب کی اوپر چھائی ہوئی ہے، یعنی مفہوم عدل، معنی عدل اس قدر اس کو وسعت ہمیں دینی چاہیے کہ جو اس کے ماتحت ہر نیکی اور خصلت اس کے ماتحت آ جائے، اور جو نیکی اور خصلت اس کے ماتحت نہیں آتی وہ ظلم کہلائے گا، کیونکہ عدل کا مقابل کیا ہے؟ ظلم ہے. یعنی بعض ایسی خصلتیں ہیں جو بعض موارد میں ممکن ہے نیکی کہلائیں، بہت قابل توجہ یہ نقطہ ہے، بعض ایسی خصلتیں ہیں کہ جو بعض موارد میں کیا کہلائیں؟ نیکی. مثلا جھوٹ، اگر ایک جگہ پہ پتہ ہے میں نے سچ بولا تو فلاں بندہ ہے، مومن بندہ، اس کی گردن اڑا دی جائے گی، یا میں نے اگر سچ بولا تو اس ملت اور ریاست، مثلا پاکستان कि सारे के सारे राज दुश्मन के हाथ में पहुंच जाएंगे। वहां पे सच बोलना क्या नेकी है, झूठ बोलना वहां पे वाजिब है। पूरी कौम को डुबोना और पूरी कौम को बर्बाद करना कि राज मिल्लत के राज किसी दुश्मन के हवाले कर दें, ऐसा नहीं है। इसी तरह से और ऐसी चीज़ें हैं, मसलन बाज़ मजबूरी के आलम में चीज़ें हलाल हो जाती हैं। आपने देखा कि बाज़ खसलतें हैं उनके बरक्स नेकी बन जाती है और वही बुराई बन जाती है, लेकिन अदल कभी ऐसा नहीं होता। मजबूरी से मजबूरी भी हो जाए, अदल को नहीं तर्क किया जाएगा वरना जुल्म का इनवान आ जाएगा। इसलिए क्या फरमाया, अल अदलु सायसुन, ये तमाम इंसानी खसलतों के ऊपर मुदीर, ये मुदीर है जो उन्हें उनकी जगहों के ऊपर और हद में रखती है, वो हद से बाहर निकला जुल्म बन जाएगी। आमुन और तमाम इंसानी खसलतों को शामिल है। वलजूदो आरिदुन खासुन, जबकि जूद आरिज होता है खास बंदों को, उसके मवारिद खास हैं, उन खास मवारिद के अलावा जूद जुल्म बन जाएगा। जूदो सखा उसके मवारिद हैं, मसलन आप जूदो सखा करना शुरू कर दें और दुश्मन के भी मदद करना शुरू कर दें। कितने ऐसे अफराद हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने गुर्बत और फ़क्र की बेड़ियां और हथकंडे पहनाए हुए हैं, आप जूदो सखा करके उन फासिकीन की बेड़ियां काट दें, वो पूरे माशरे में फिस्क फजूर करते फिरेंगे। दीन इस्लाम ने इस हिकमत को नज़रअंदाज नहीं किया, इसलिए आप खुम्स और ज़कात के मसारिफ़ पढ़ें। अगर आदिल नहीं है और ग़रीब है, इस्लाम कहते हैं कि नहीं, तुम खुम्स नहीं दे सकते, दोगे तो अदा नहीं होगा। ज़कात नहीं दे सकते, दोगे तो अदा नहीं होगा। इसी तरह से अहकाम शरिया में आता है कि अगर जजिया दे के गैर मुस्लिम रह रहा है तो गैर मुस्लिम को इतनी कुव्वत नहीं दी जाएगी कि वो असलहा तैयार करके मुसलमान इस्लामी रियासत के ख़िलाफ़ इकदाम कर सके, वहाँ पे इतना उसको जूदो सखा नहीं दिया जाएगा। लिहाजा जूदो सखा खासुन, वो ख़ास मवारिद हैं उसके। आरिज़ुन, आरिज़ होता है लोगों के साथ उसका ताल्लुक़ कायम होता है, माशरों के साथ, डिपार्टमेंट के साथ। जैसे मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट हैं वो काफ़ी सहूलियात देते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, देनी चाहिए। ज़मीन दे देते हैं, फ़ंड दे देते हैं, हस्पतालों में इलाज फ्री कर देते हैं, कोई मज़ीद बोनस दे देते हैं, देना चाहिए। जूदो सखा अच्छी चीज़ है, आरिज़ होना चाहिए, लेकिन ख़ास मवारिद में, हर मौरिद में नहीं। लेकिन अदल, उसकी हुक्मरानी हर ज़र्रे ज़र्रे के ऊपर है। फल अदलो, फिर इमाम फरमाते हैं, अशरफ हुमा व अफजल हुमा, अदल से बढ़कर कोई शरीफ तर चीज़ नहीं है, अदल से बढ़कर कोई अफजल तर चीज़ नहीं है। इन दोनों में सबसे अफजल और सबसे बढ़तर क्या है, वो अदल है, जूद नहीं है, वो अदल है। इख्तिताम में हम एक और हिस्सा पढ़ देते हैं और इंशाल्लाह उसकी तशरीह अगले दर्स में आपके सामने की जाएगी, क्योंकि टाइम हमारा ज़्यादा हो गया है। इमाम अली अलैहिस्सलाम उनका कलाम है, खुतबा नंबर 15 है, तरतीब आगे पीछे हो सकती है। फरमाते हैं, वल्लाहि लौ वजदतुहु, अब सियासत का तरीक़ेकार और मौक़िफ़ देखें। मौक़िफ़ है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम किया है कि अगर वो हुकूमत में आ जाएँ और हाकिम बन जाएँ और ये इदारे उनके मातहत हों, वो किस शिद्दत के साथ अदल को जारी करेंगे। बता फरमाते हैं, वल्लाहि लौ वजदतुहु कद तुज़व्वुज बिहिन निसाउ, कि अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि जंग में पकड़ी जाने वाली कनीज़ें कैद करके लाई गईं और उनसे निकाह रचा के घरों को आबाद किया गया है, तो वमुलिक बिही अल इमाउ, और इन कनीज़ों को अपनी मिल्कियत बना लिया गया है, लरदत्तुहु, तो मैं इन घरों में जा जा के उन कनीज़ों को जमा करूँगा। घर तोड़ना मेरे लिए कबूल है, लेकिन ये जो बैतुल माल की मिल्कियत थी उसका ये नाइंसाफ़ी के साथ इस्तेमाल मेरी नज़र में सही नहीं है, लरदत्तुहु, मैं उसे वापस पलटाऊँगा। फ़इन्ना फ़िल अदल सआतन, याद रखो अदल में वसअत है, ना कि इस तरह से करप्शन के अंदर वसअत है। अदल से पेट इस तरह से भरता है कि कोई फ़कीर नहीं रहता, और करप्शन से चार पांच बंदों का पेट भरता है। और अगर अदल नाफिज हो जाए, जितना उन्होंने करप्शन करके कमाया है मुमकिन है उतना वो अदल के ज़रिए से कमा लें। इन्नल फिल अदला सातन, अदल में वसतें ही वसतें हैं। व मन ज़ाक़ अलैहिल अदलो, और वो शख्स जिसके ऊपर अदल तंग पड़ जाता है, फल जौर अलैहि अज़्यक़ु, तो याद रखो ज़ुल्म सितम उससे भी ज़्यादा उस माशरे को तंग तर कर देगा। यानी एक माशरे में अदल जारी करें तो मुश्किलात आती हैं, क्राइसिस आते हैं, मसाइल पैदा होते हैं। जैसे पाकिस्तान में अमरीका से ये शैतानी सारे मंसूबे ख़त्म कर दें, अगर पाकिस्तान जो है वो मफाद की सियासत छोड़ दे तो डर क्या है, वो कहेंगे गंदम कहाँ से आएगी, वो कहेंगे रहोगे कैसे, कर्जे कौन हमें देगा, ठीक है तंगी आएगी अदल के साथ। तो फिर इमाम फरमाते हैं अगर तुम अदल की ये तंगी नहीं उठाओगे, फल जौर अलैहि अज़यक़, फिर तो जो जुल्म की राह इख्तियार करोगे वो उससे कई गुना ज़्यादा तुम्हें तंग करेगी, उससे कई गुना ज़्यादा तुम्हें बदतर हालात में ले जाएगी। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि।